नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 12 श्लोक नंबर 14।
अहम् पुरा भरत नाम राजा, विमुक्त दृष्टा सुत संग बंधः, आराधनं भगवत इह मानो, मृगो भवं मृग संगात हतार्थः। अहं पुरा भरत नाम राजा, विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंधः, आराधनं भगवत इह मानो, मृगो भवं मृग संगात हतार्थः। अहं पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंधः, आराधनं भगवत इह मानो, मृगो भवं मृग संगात हतार्थः।
शब्दार्थ अहम् मैं, पुरा पहले पूर्व जन्म में, भरत नाम राजा, भरत नाम का राजा, विमुक्तः मुक्त, दृष्ट श्रुता प्रत्यक्ष अनुभव से अथवा वेदों से ज्ञान प्राप्त करके, संग बंधः संगति का बंधन, आराधनम पूजा, भगवतः भगवान की, इहमानः सदैव करते हुए, मृग अभवम मैं मृग बन गया, मृग संगात मृग के साथ, घनिष्ठ मैत्री से, हत अर्थः भक्ति के विधि विधानों की अपेक्षा करके। अनुवाद, मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा संसारिक कार्यों से पूर्णतया विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त की। मैं पूर्णतया भगवान की सेवा में तत्पर रहता था, किंतु दुर्भाग्यवश मैं एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त हो उठा कि मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। यहां पर वर्णित घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती श्लोक में कहा गया है, बिना महत पाद रजो विषयकम्। महापुरुष के चरण कमल की धूलि को सिर पर धारण किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि सद्गुरु के आदेशों का निरंतर पालन किया जाए तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु ज्यों ही अज्ञानी शिष्य महत्वाकांक्षा के कारण अपने गुरु का स्थान बलात् लेने का प्रयास करता है, त्यों ही उसका पतन हो जाता है। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो यश प्रसादान न गति ही कुतोपि। यदि शिष्य गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है तो उसकी प्रति प्रगति रुक जाती है। भक्ति करते हुए भी भरत महाराज ने मृग के प्रति अत्यधिक आसक्त होने पर किसी गुरु से सलाह नहीं ली, फलतः वे मृग से अत्यधिक आसक्त हो गए और अपने नैतिक कर्म भूल जाने से नीचे गिर गए। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं दधाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यद्वेषतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज यहाँ पे प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में पधारे हुए सभी भक्तों के चरण कमल में मैं प्रार्थना करता हूँ आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं भगवान के कुछ गुणगान कर सकूं। तो ये श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद 12 अध्याय 14वां श्लोक है। तो इस श्लोक में जर भरत जी जो महाराज रघुगण द्वारा पूछे गए पहले उन्होंने प्रश्न किया था, तो इस श्लोक को समझने से पहले हमें श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंदे 10 अध्याय 16 नंबर श्लोक में महाराज रघुगण ने प्रश्न पूछे थे तो उसका उत्तर इस अध्याय में दिया जा रहा है। तो प्रश्न क्या था, कस्तम निगूढ़ चरसी द्विजानाम विभरसी सूत्रम कतमो उदितः। इसी स्कंद के 10वें अध्याय में महाराज रघुगण ने प्रश्न पूछा था कि कस्तम आप कौन हो और निगुड़ चरसी, निगुड़ कहते हैं आप छुप करके एकदम गुप्त रूप से आप चर रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, और आपने किया क्या किया हुआ है, आप पर आपके शरीर पर सूत्रम, सूत्र कहते हैं जो ब्राह्मण लोग धारण करते जनेऊ, है ना, यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है, जो जनेऊ भी धारण किए हुए हो और अवधूत, आप मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप वास्तव में साक्षात कोई बड़े ऋषि मुनि होंगे, इस प्रश्न को पूछे थे पहले, तो उसी का उत्तर आज के श्लोक में दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कश्यासी, आप किसके शिष्य हो या फिर किसके पुत्र हो, कुत्रत्य, आप कहां से पधारे हो, यहां पे कहां से आए हो, और यहां भी कस्मा, किस कारण से यहां पे आए हो। देखिए ये श्लोक में जो कि 10 अध्याय में महाराज रघुगण ने प्रश्न पूछा था, उसको आकर के उसका उत्तर 12वें अध्याय में आकर के दे रहे हैं जरभरत जी। फिर ये कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कि क्षेमाय नश्चेदसी नोत शुल्क, आप मेरे कल्याण करने के लिए तो नहीं आए हो। तो इसके उत्तर में आज जो श्लोक आज जो चल रहा है, दो श्लोक में जरभरत जी उत्तर देंगे कि अपना परिचय देंगे कि मैं वास्तव में मैं कौन हूं। तो यहां पे कहते हैं अहम पुरा भरतो नाम राजा, पुरा पुरा मतलब पहले की बात है, पहले मतलब पहले जन्म में, यहां प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि पूर्व जन्म में अहम मैं भरतो नाम राजा, भरत नाम के प्रसिद्ध प्रख्यात मैं कौन था, राजा था। तो आपने आपने विषय में अब परिचय दे रहे हैं जाकर के, हम देखते हैं हम सुनते आ रहे हैं काफी दिनों से कि जड़ भरत ने कभी अपना मुंह नहीं खोला, इसीलिए उनके नाम था जड़ भरत, जड़ के सम्मान रहते थे वो, लेकिन जब उनको सही पात्र मिल गया, हाँ, जब उनको पता चला कि ये जो महाराज रघुगण जो है सत्संग के लिए भगवान कपिल मुनि के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, पता चल गया उनको, तब उन्होंने जिज्ञासा भी की, उन्होंने देखा जरभरत जी ने, अच्छा ये तो पात्र है, मैं इसको कुछ ज्ञान दे सकता हूं, तब जाकर के उन जरभरत जी ने मुंह खोले जाकर के, तब जो है उन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया। तो कहते हैं कि भरत नाम राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम के एकदम प्रख्यात मैं राजा था। तो फिर राजा थे तो आपने क्या किया, फिर कहते विमुक्त दृष्ट सुतसंग बंध, मैंने ये एक्चुअली ये श्लोक में उन्होंने लगभग आपने पूरी कहानी कह डाली कि मैं कौन था, क्या क्या कर रहा था। तो मैं ये संसार की राजपाट से, हाँ, जितने भी कोई साधारण राजा नहीं थे, पूरे चक्रवर्ती राजा थे, इस संसार से विरक्त होकर के विमुक्त दृष्ट, दृष्ट कहते हैं जो हमारे आंख द्वारा जो हमें देखे जाते हैं, लौकिक और परलौकिक सुख दोनों से मैं विमुक्त होकर के भगवान की भजन करने के लिए मैं हिमालय पे चला गया था। देखिए यहां पर जो जरभरत जी है आपने को संबोधित करे कि मैं पहले पूर्व जन्म में मैं कौन था, राजा था, और मैंने पूरी राजपाट त्याग कर करके, पूरी राज्य शासन त्याग कर करके मैं भगवान की भक्ति करने के लिए मैं जंगल में वन में अर्थात हिमालय में मैं चला गया। तो वहां पे हुआ क्या, आप जंगल में जाकर के क्या किए, आराधनम भगवत इरहमानो, ऐसे नहीं कि घर बार छोड़ करके ऐसे ही बस डूलते रहे, नहीं, भगवतम आराधनम, भगवान श्री कृष्ण की अर्चना पूजा की और भगवान की प्रेम भक्ति में मैं लग गया, भगवान की भक्ति में करना प्रारंभ किया। तो हुआ क्या महाराज, तो फिर आपको ऐसे योनि कैसे प्राप्त हुई, फिर वो एक घटना बोलते हैं मृगो अभवम, लेकिन दुर्भाग्यवश भजन तो मैं करने चला गया, लेकिन ऐसी घटना घटी कि मैं दुर्भाग्यवश दूसरे जन्म में मुझे मृग हिरण का जो है शरीर प्राप्त हो गया, कैसे प्राप्त हुआ आपको हिरण का शरीर? फिर बोलते मृग संगात हतार्थ। मृग संगात, आप देखते हैं नीचे, मृग की संगति से, मृग की संग करने से मैं अगले जन्म में मुझे कौन सा शरीर प्राप्त हुआ? मृग का शरीर प्राप्त हुआ। फिर यहां पे उसके संबोधित करते हतार्थ, हता अर्थ यश स हतार्थ, जो कि मृग की वजह से, इस हिरण की वजह से जो काम मैं करने के लिए जंगल चला गया था, जो भक्ति करने के लिए पूरा राजपाट छोड़ करके जिस काम के लिए मैं गया था, जो प्रयोजन के लिए गया था, वो हत अर्थ, उसका अर्थ ही नष्ट हो गया है। यहां पे कहते हैं कि हतार्थ, कहते कि प्रयोजनम यश, हत अर्थ प्रयोजनम यश स स हतार्थ, जिसका प्रयोजन ही नष्ट हो गया। उनका प्रयोजन क्या था भरत महाराज का जंगल जाने का? क्या था? भगवान की भक्ति करना था, भगवत प्राप्ति के लिए वो पूरे राजपाट छोड़ करके जंगल की तरफ चले गए थे, और वो हिरण के कारण, इस मृग के कारण उनका क्या हो गया? प्रयोजन नष्ट हो गया, हत हो गया, खत्म हो गया, जिसके लिए गए थे वो मिला नहीं उनको, और उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ? पशु योनि मिला उनको जाकर के। इसमें कारण क्या था? कारण मृग में आसक्ति के कारण था। देखिए, जो भरत महाराज सारे राजपाट छोड़ करके, ऐसे नहीं कि उनको कोई ज्ञान नहीं था, शास्त्र का ज्ञान नहीं था, ऐसे नहीं, संपूर्ण मात्रा में उनको ज्ञान था, फल्गु वैराग्य नहीं था, जैसे बंदरों पे वैराग्य होता है कुछ समय के लिए, ऐसे वैराग्य नहीं था। वास्तव में उनको लोक प्रलोक दोनों तरह के ज्ञान था उनको, उनसे आसक्ति नहीं था। ऐसे राजपाट को छोड़ कर करके भगवान की भक्ति करने तो गए, कुछ समय भक्ति तो किए, लेकिन ऐसी घटना घटी कि वो हिरण में आसक्त हो गए। मैं इस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कथा आप बार बार सुनते आ रहे हैं कि क्या कैसे घटना घटी, लेकिन मैं कुछ पॉइंट में बोलना चाहूंगा। जड़ भरत जी ने उस मृग बच्चा का, जो बालक, जो हरिण का बच्चा था, उनको उन्होंने उद्धार किया, अच्छा किया, कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि वैष्णव जन जो होते हैं जीवों के ऊपर वो क्या करते हैं? दया करते हैं। जीवे दया नामे रुचि, ये वैष्णव का एक लक्षण है, जीवों पर दया करते हैं। यहां तक तो ठीक था, उसके पीछे मारने के लिए जब दौड़ रहा था तो उन्होंने उनको बचा दिया, वहां तक ठीक था। ठीक है, बच्चा था, कुछ समय के लिए आश्रम में रखे होंगे, उसके बाद उसको खिला पिला करके थोड़ा बड़ा हो जाता तो जंगल में वापस छोड़ देना चाहिए था उनको। उनके ये मृग शरीर बनने का, पशु योनि मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या था? कि अहम भाव था उसमें। कौन सा अहम भाव था? यदि मैं इस मृग के बच्चे का मैं पालन नहीं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे पशु जो है इसको क्या करेंगे? खा जाएगा, है कि नहीं? अहम भाव आया कि नहीं? वास्तव में भरत महाराज पूरे जनता के, पूरे संसार के पालन कर रहे थे, केवल एक मृग के नहीं, लेकिन वहां पे उनको अहम भाव आ गया। भगवद गीता में भगवान भी कहते, प्रकृति किरमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मान्यते। यहां पर यह श्लोक लागू हो जाएगा, करता हम इति मान्यते, मैं करता हूं, ये भाव आ गया उनको। और उन्होंने क्या किया? भजन तो छूट गई, जो चीज, जो प्रयोजन, यहां पे इसीलिए कहा गया हतार्थ, अर्थ प्रयोजन उनका नष्ट हो गया। प्रयोजन क्या था? भगवान की भक्ति करना था, भगवत प्राप्ति करना था। संसार से वैसे ही वो पीछे छोड़ के आ गए थे, सारे आसक्तियों को छोड़ के आ गए थे, फिर भी जाकर के छोटी सी पशु पे जाकर के आसक्ति हो गए, जबकि वो पशु मनुष्य के भाषा भी नहीं बोल सकता था, ऐसे जब पशुओं पे जाकर के आसक्ति हो गए। तो इसके पीछे क्या प्रयोजन था? जड़ भरत जी क्यों कह रहे हैं? आपने परिचय में इतना बड़ा बता दिया, और ये सब बात उनको कैसे मालूम? बल्कि वो तो अभी ब्राह्मण योनि में थे, ब्राह्मण शरीर उनके, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हो गया था, है कि नहीं? पर ये सब बात उनको कैसे मालूम? स्मरण भगवत कृपया, भगवान की कृपा से। क्योंकि जब जिस समय भरत महाराज सारे राजपाट छोड़ करके भगवान की भक्ति करने के लिए गए, उस समय उनका हृदय शुद्ध था, छल कपट नहीं था, सरल हृदय से वो भगवान की भक्ति करने चले गए थे। इसीलिए भगवान ने देखा, चलो ये तो भक्ति करने गया, लेकिन कुछ कर्म तो है जिसके वजह से वो मृग शरीर प्राप्त हुआ उनको। तो यही कारण था। तो हम देखते हैं, ये तो काफी दिनों से हम कथा सुन रहे हैं, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा प्रद है। हम यहां श्रीधाम वृंदावन में आते हैं, सभी का प्रयोजन, हमारा लक्ष्य एक ही है, वह लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भक्तों की सेवा, है ना, भक्तों का संग। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जड़ भरत एकांत में भक्ति करने गए, है ना, अकेले गए थे। अगर मान लीजिए जड़ भरत भक्तों के संग में होते वहां पे, जैसे अभी हम यहां भक्तों के संग में हम भक्ति कर रहे हैं, आप देखते हैं हम जब सुबह जप करते हैं तो कोई भक्त सो जाता है तो दूसरा ऐसे जगा देता है, ए उठ प्रभु जी, उठो उठो, आपको मदद, आपकी मदद के लिए कौन है, बगल अगल बगल में भक्त लोग हैं। भक्त के संग था यही तो फायदा है। यदि आप एकांत में भक्ति करने जाओगे, जप करोगे, आपको नींद आ जाएगी, आपको उठाने वाला कौन होता है? फिर होता कोई? कोई नहीं होगा। फिर सो जाना तो सो जाओ, आपको देखने वाला कोई होते नहीं, क्योंकि आप भक्त के संग में नहीं होते हैं। जड़ भरत जी भूल गए अपने आपको, उनकी प्रयोजन जो था भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं कर पाए, और उनको देखने वाला भी कोई नहीं था। सबसे बड़ी बात, कोई भक्त के संग में नहीं थे, वो आसपास में कोई भक्त नहीं था, इसीलिए वो क्या हो गए, पतन हो गए वहां से। इसीलिए प्रभुपाद जी इस बात को बार बार कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवो मात्र साधु संग परम सिद्धि हो। इसीलिए शास्त्र में भी यही बताता है कि सही साधु, जो शुद्ध भक्त है, उसकी संगति करनी चाहिए। यहां पे जड़ भरत जी ने, जब भरत महाराज थे उस योनि में, उन्होंने केवल हिरण कोई कुसंगति नहीं था, लेकिन आसक्ति जाकर के बना दी संगति। जैसे संग करते हैं वैसे रंग तो होता ही है। तो यहां से हमें यह शिक्षा प्राप्त होता है कि हम भी घर परिवार छोड़ करके कभी यहां पे भक्ति करने आते हैं, हमारा प्रयोजन है भगवत प्राप्ति। जड़ भरत तो एक माध्यम है, वो तो भगवान के धाम चले गए, है कि नहीं? राजा थे, राजा के बाद पशु योनि मिला, पशु योनि के बाद में जब वो हिरण के योनि में भी थे, तो उस हिरण योनि में भी, मृग योनि में भी उनको सारे स्मरण शक्ति था, उनको पूर्व जन्म का याद था कि मैं कौन था, किस लिए मुझे ये योनि प्राप्त हुआ है, सब स्मरण था। अब इसी बात को मैं कहूं, हम में से किसी को स्मरण है क्या, हम लोग पूर्व योनि में कौन थे? नहीं पता। हो सकते हम में से कोई देव योनि में से आए हो, या कोई असुर योनि में से आए हो, है ना, या हो सकता है नरक से ही आए हो, पशु योनि में से आए हो, अलग अलग योनि में से आ सकते हैं, लेकिन हमें इस बारे में कोई ज्ञात नहीं है, हमें पता नहीं है। लेकिन भरत महाराज को मृग योनि में भी उनको ये ज्ञात था, भगवान की असीम कृपा थी, हिरण के योनि में भी उनको भगवान की स्मरण रही, पूर्व जन्म में उन्होंने जो गलती किया उसका वो याद कर रहे थे, और ये हिरण के योनि में क्या किया, और दूसरे हिरण के जैसे, दूसरे पशु के जैसे वो गुल मिल करके नहीं रहते थे, एकांत में रहते थे, एकांत में रह करके पशु योनि में भी वो भगवान के चिंतन करते थे, जितना आवश्यकता उतना खाते थे। ये है जड़ भरत की कहानी। पशु योनि में भी वो क्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। अब बताइए कोई साधारण थे वो? हमसे तो धन्य ही थे, हम मनुष्य योनि में भी 24 घंटे भगवान को याद नहीं कर सकते, लेकिन वो पशु योनि प्राप्त करने पर भी भगवान की भक्ति कर रहे थे। उसका परिणाम क्या हुआ, दूसरे जन्म उनको एकदम शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जाकर के उनका जन्म हो गया। तभी भी उनको सारा याद था कि उनका दो जन्म पहले वो क्या क्या कर रहे थे। लेकिन हम में से किसी को याद नहीं है, है भी नहीं है। कई बार हम देखते हैं ज्योतिष के पास जाते हैं तो आपके कुंडली निकालता है आपका ये योनि से आए हैं, लेकिन उसको भी नहीं पता वो कहां से आए। भगवान गीता में कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि भगवान के कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो भगवान उसको महत भय, बड़े से बड़े विपत्तियों से भगवान क्या करते हैं, बचाते हैं। यही चीज यहां पे भगवान ने मृग योनि में जाते हुए भी उनको स्मरण शक्ति दिलाई, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। जड़ भरत के योनि में भी उनको कृपा था, उनको सभी चीज मालूम था, शास्त्र भी पता था, फिर भी वो कैसे रहते थे, मूढ़ जैसे रहते थे, एकदम है ना मूर्ख जैसे रहते थे, कुछ बोलो तो कुछ और कर देते थे, है कि नहीं। यहां तक कि आप सुनते आ रहे जब है ना कुछ आदिवासियों ने पकड़ के ले गए बलि चढ़ाने के लिए, तभी भी मुंह नहीं खोले, चुपचाप थे, खाए पिए और तैयार हो गए काटने के लिए, बलि के लिए कुछ भी नहीं बोले। ये है भगवत प्राप्ति का मार्ग। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलता है कि वास्तव में भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, और जो मिथ्या भावना जो अहंकार है उससे कैसे दूर होना चाहिए, बहुत बड़ी शिक्षा है। नहीं तो हमारा भी हत प्रयोजन, हम जिस के लिए यहां पे आए हैं, जिसके लिए हमारा मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, मनुष्य योनि प्राप्त होने का एकमात्र प्रयोजन है वो है भगवत प्राप्ति। केवल मनुष्य योनि में ही संभव है, देव योनि में भी संभव नहीं है, पशु योनि में तो है ही नहीं भगवान के धाम जाने, केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। तो हमारा जो प्रयोजन भगवत प्राप्ति से यदि हम वंचित हो जाते हैं तो हमें मनुष्य योनि मिलने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहां पे काफी सारे चीजें हैं बोलने के लिए। इसमें सबसे बड़ी जो गलती भरत महाराज ने की है वह था संगति, और प्रभुपाद जी बोलते हैं वो गुरु के निर्देश के अनुसार में वो काम नहीं कर रहे थे। जब भरत महाराज मान लीजिए हिरण पे आसक्ति हो गए थे, उनको उनके गुरु के प्रति जाना चाहिए, महाराज मुझे मेरे भक्ति नहीं हो रही है, हाँ मेरी जप नहीं हो रही है, मुझे भगवान के भक्ति में मन नहीं लग रहा है, तो गुरु वो क्या करते हैं आपको, हाँ गाइड करते हैं, आदेश देते हैं आपको कैसे क्या करना है, फिर आपको मदद करते हैं, वो नहीं किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी पतन का कारण भी बताते हैं कि वो कोई भक्तों के पास या गुरु के पास नहीं गए, उनको लगा कि मैं अकेला ही मैं कर सकता हूं। हो सकता है हम में से भी बहुत सारे भक्त लोग हैं, काफी सारी समस्या है, हमारे जीवन में भक्ति नहीं हो पाती है सही ढंग से, तो हम संकोच करते हैं, जो वरिष्ठ भक्त लोग हैं या फिर गुरुजनों से पास जाकर के हम पूछ लें, है कि नहीं, और संकोच के वजह से क्या होता है, हमारा भक्ति गिरता जाता है, बढ़ता नहीं है। तो यहां पे बहुत बड़ी शिक्षा प्रद है। यदि किसी प्रकार की शंका हो भक्तों में, ये तो देखिए मनुष्य शरीर मिला है, कुछ ना कुछ समस्या तो होगी होगी, हाँ अगर आपको ऐसे लगे कि किसी समस्या की वजह से मेरे भक्ति में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, भगवत भक्ति से मैं च्यूत हो रहा हूँ, तो उसको जा करके जो भी सीनियर भक्त लोग के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए और उसका समाधान कर लेना चाहिए, अपनी पतन से पहले ही ये सारे चीज कर लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो यहाँ पे ये श्लोक में और जो कल वाली जो आगे वाली 15वां श्लोक में भी अपना ही परिचय देंगे, जाकर के बोलेंगे कि मैं कैसे था क्या था, ये एक तरह से परिचय दे रहे, वो बोल बता रहे कि मैं कौन था, किस तरह से मैं इस ब्राह्मण परिवार में आया और किस तरह से आपसे मिला। तो यहां पे मूल बात यह है कि हम लोग भी हमारा भी कुछ न कुछ हाल जड़ भरत जैसे ही है, भक्ति करने तो आए हम लोग, और हमें सुबह से शाम तक देखना चाहिए कि हमारी भक्ति कितनी हो रही है। कल गौर सुंदर प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद जी अलग अलग कार्य करते थे, पूरे संसार में वो मैनेज कर रहे थे, यहां पे फिर भी वो प्रत्येक क्षण 24 घंटा भगवान की याद कर रहे थे प्रभुपाद जी। हम भी सेवा करते हैं कुछ घंटे, हम 8 घंटा 10 घंटा जो भी हम सेवा करते हैं, उस समय भी भगवान की स्मरण होनी चाहिए। और ऐसे संग करें ऐसे भक्तों की जो कि भगवान में अचल निष्ठा रखता हो, भगवान में अचल श्रद्धा हो जिसका, केवल वाक्य से नहीं आचरण भी ऐसा ही हो उसका। अगर ऐसे भक्त की संग मिल जाता है एक ही बार में वो भगवान के धाम जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शिला प्रभुपाद जी है। हम दूसरी जगह क्यों जाए, प्रभुपाद जी है 70 साल की उम्र में, आप लोग सुने हैं कहां गए थे, अमेरिका गए थे, और जो मलेच्छ जो कि पशु से भी बदतर जिंदगी बिताते थे वहां पे, जो 4 नियम हम बोलते हैं सारे को तोड़ते थे, वो गौमांस, मतलब जैसे हम राइस चपाती खाते ना वैसे वो ब्रेकफास्ट में गौमांस खाते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी समय के लिए, ऐसे नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल संगति नहीं दिए। कई कई भक्त हैं जो सन्यासी बन गए, अभी महाराज बन गए, हमें हमने सुनने को मिला है कि वो केवल कुछ 1 घंटा या कुछ समय के लिए प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, या प्रभुपाद जी के द्वारा जो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाए, या प्रभुपाद जी के कीर्तन सुने, उसके बाद में तुरंत उनके हृदय क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। और उनका जिंदगी कैसा था पहले, नरक से भी एकदम गुजरा हुआ बदतर जिंदगी था। लेकिन शुद्ध भक्ति की, शुद्ध भक्तों की केवल छोटी सी थोड़ी सी भाई उनको क्या मिला, संगति मिला, तो उनका जीवन क्या हो गया, परिणत हो गया, बदल गया, कहां से कहां पहुंच गए। उसका परिणाम हमारे समक्ष आज है, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग। इसका उदाहरण हम देखते हैं, इसका ठीक विपरीत कुछ समय से हम सुनते आ रहे हैं ना, कौन, अजामिल की कथा में भी आप सुनते हैं, अजामिल का जन्म हुआ था कहां, ब्राह्मण परिवार में, जबकि ब्राह्मण को होना चाहिए यजन याजन पठन पाठन, भागवत में कहा गया है यज्ञ करना कराना है ना, पाठ करना दूसरे को पढ़ाना, ये ब्राह्मण के, ये ब्रह्म कर्म समावजन ब्राह्मण के कर्म है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब समीदा लेने गए थे जंगल में तो ऐसे दृश्य देखा, तब से वो क्या हो गए, विचलित हो गए, तब से वो भगवत भक्ति से च्यूत हो गए, उनका प्रयोजन भी हत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ रामायण की किसने रचना की, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी को आप देखोगे पूर्व जन्म में वो कौन थे, वाल्मीकि जी होने से पहले, ऋषि बनने से पहले वो कौन थे जी, अरे डाकू थे, मतलब कोई अच्छे नहीं थे, चोर डाकू थे, लोगों को लूटना मारना पीटना काटना है ना, वो तो लगभग एकदम शूद्र से भी नीच के थे, बता सकते हैं है कि नहीं। दूसरों को कष्ट देना, पर दुखे सुखी, दूसरों के दुख में सुखी होना, इस तरह के स्वभाव के थे वो। लेकिन संग किसका मिला उसको, नारद मुनि, मिला कि नहीं मिला, ऐसे बेहतर से बदतर, इतने मतलब नीच से नीच को भी यदि भगवत भक्ति शुद्ध भक्ति की थोड़ी सी भी संगति मिल जाती है तो वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। वैसे ही हमें और दूसरे उदाहरण मिलती है श्रीमद् भागवतम में, जब व्यासदेव जी को सारे पुराण है ना वेद करने के बाद भी उनको संतुष्ट नहीं हुई, तब जाकर के नारद मुनि उनको बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, दासी पुत्र था मैं, कोई मैं ऐसे नहीं कि हमारे पिताजी वैष्णव परिवार में थे ऐसे आया, नहीं मैं दासी पुत्र था। और मेरी माँ एक दिन ऐसे आया कि चतुर्मास में जो है भक्त लोग आ गए गांव के आसपास में, वहां जाकर के सेवा करती थी, बर्तन मांजना लीपना झाड़ू पोछा करना, तो बच्चे को भी संग में ले जाती थी, तो उसके प्रभाव से वो क्या हुआ, साधु लोग कृपा किए उन पे, कभी उच्छिष्ट खिलाते थे कभी प्रसाद, तो आश्रम में क्या चलता था, कथा चलता था, उनको सुनने के मिला। और इस साधु संघ के दूसरा योनि उनको क्या प्राप्त हुआ, नारद बन गए। देखिए जो नारद लगभग भक्तों के गुरु है, श्रीमद् भागवतम में आप जाए चाहे प्रहलाद महाराज को ले लीजिए, चाहे ध्रुव महाराज को ले लीजिए, चाहे और भी बहुत सारे शिष्य हैं, नारद मुनि के ही लगभग शिष्य हैं, ये मात्र भगवान के शुद्ध भक्तों का छोटी संगति का फल है। और यहां पे हम देखते हैं कि जड़ भरत जी जान लिए मैं क्या करने गया था, कहां फंस गया, दूसरे योनि मुनि कैसे मिला। अब ये जड़ भरत को ये जब ये योनि मिली तो एकदम चुप हो गए, अब मुझे गलती नहीं करनी। एक उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं नहीं करूंगा अब गलती, इस माया में दोबारा मैं नहीं आने वाला, मैं जैसे भी हूं मैं भगवान की भक्ति करूंगा, ये न कि न प्रकार, अब मैं किसी के झांसे में मैं नहीं आने वाला। इसको कहते दृढ़ विश्वास। जब तक इस विश्वास हमारी जिंदगी में नहीं आती है, वह भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती है। हम भी कहीं ना कहीं हम लोगों में हम अहम भाव आती है ना, हमारे परिवार है, बच्चे हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि मैं नहीं पालूंगा, मैं नहीं काम करूंगा तो कौन खिलाएगा इससे। तो लगभग संसार में तो जड़ भरत जी पड़े हुए हैं, भरत मां जिस तरह से हम वो सोचते थे, वो कारण भी वही था, मृग को देख रेख करना कारण नहीं था, अहम भावना था, मैं देख रेख नहीं करूंगा तो ये मर जाएगा, दूसरे जीव इसको खा जाएंगे, अहम भावना था, अहम करता शाम, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं रक्षा करने वाला हूं, मैं मारने वाला हूं, मैं खिलाने वाला हूं, मैं मेरा ये भावना था। उनकी पतन के कारण ही यही था, मैं तो बकरा ही होता है, मैं करता रहता, तो कटने से पहले भी मैं ही करता रहता है। तो ये भावना जब तक रहती है, हम में से भी पता नहीं, आप लोगों में से तो नहीं होगी, लेकिन हम पर तो बहुत है, कुछ बोलते हैं तो ये किसका है, मेरा है भाई। मेरी परिवार है, मेरा घर है कि नहीं। हम इस तरह से हम खुद को परिचय देते हैं, आपको नहीं पता मैं ये हूं, मैं इनके ये हूं वो हूं। आपने को जब परिचय देते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा चढ़ा करके बता देते हैं हम। लेकिन भक्त जो शुद्ध भक्त होता है एकदम चुपचाप रहते हैं। जबकि जड़ भरत जी को बोला गया पालकी में ढो, वो मना कर सकते थे, देखो मैं ब्राह्मण हूं, मैं कैसे ढोऊं, आप तो राजा हो, आप क्षत्रिय हो, बहुत बड़ी अपराध। कुछ नहीं बोले, चलो ठीक है, ढो लिए तो उठा दिए, चल दिए, कुछ नहीं बोले। अगर हम में से कोई बोलेगा प्रभु जी थोड़ा सा ये सेवा कर, अरे आपको नहीं पता मैं ऐसी सेवा थोड़ी ना करूंगा, किसी और को बता दो। ये भावना लाना बहुत मुश्किल की बात है। कथा तो सुन रहे हैं हम कितने दिनों से, इसकी प्रभाव कितनी है हम पर। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो सारे ज्ञान धरी की धरी रह जाती है, यही पर है ना माता जी, यही पर रह जाती है। तब अपनी अहम भाव निकलता है वहां से। तो इसमें सबसे बड़ी जो भरत महाराज का जो वीक पॉइंट था, कमजोर थी, भक्त के संग में नहीं थे वो, गुरु के चरण में नहीं थे वो, एकांत में जाकर के भक्ति किए। प्रभुपाद जी एकांत शब्द का अर्थ करते हैं भक्तों के साथ भक्ति करना, भक्तों के संगति में बैठ करके भगवान की भक्ति करना, तब जाकर के बच सकते हैं कलयुग में। नहीं तो आप हम अकेले अकेले भक्ति करना चाहे तो पतन तो 2 मिनट में ही हो जाएगा उसका। बहुत बड़ी शिक्षा प्रद है ये, तो घटना हमारे जीवन के साथ प्रत्येक क्षण घट रही है, प्रत्येक क्षण हम अपने आप को हम स्वामी मानते हैं कहीं ना कहीं, प्रत्येक क्षण हमारे ऊपर अहम भावना रहता है। इसको निकालने के लिए ये जड़ भरत की कहानी बता दिया गया है। श्रीमद् भागवतम सभी के जिंदगी में, विशेष करके हम भक्तों जैसे कि जिंदगी में बहुत प्रेरणा लाता है। अलग अलग भक्तों ने कैसे देखिए, पशु योनि प्राप्त होने पर भी धैर्य नहीं खोए वो। हम में से बहुत सारे भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी पता नहीं इस योनि के बाद में, इस जन्म के बाद में हम भगवान के धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जरूरी नहीं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जरूरी ये है कि भक्ति हम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस जरूरी इतना ही है। जरूरी यह है कि हम अपने गुरु जो गुरु महाराज ने जो आज्ञा दिए हैं उसका हम पालन सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। प्रभुपाद जी ने जो मार्ग में हमें बताया उस मार्ग में हम सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं, वह जरूरी है। कई बार हमने भक्तों से कथा सुना है। प्रभुपाद जी ने भी यहां पर लिखा, यश प्रसाद भगवत प्रसाद, यश प्रसादात नगति कुतोपि। हम बद्ध जीवों में बहुत सारे अवगुण हैं। अवगुण कहते हैं हमारे ऊपर अच्छे गुण नहीं है, स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। लेकिन जब वह जीव गुरु के निर्देशन में जब सेवा करने लगता है, गुरु पे पूरा निष्ठा होकर के सेवा करता है, तो वह अवगुण भी भगवान नहीं देखते फिर उसको। कृष्ण भी हमें ऐसे देखते हैं, कृष्ण ये नहीं देखते कि आकर के ये भक्ति कर रहा है या हमारी इतनी माला जप कर रहा है, ये नहीं देखते हैं। प्रभुपाद जी सीधा बोलते हैं, कृष्ण क्या देखते हैं कि ये गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है या नहीं, शुद्ध भक्त के चरण चिन्ह पे चल रहा है या नहीं, बस ये देखते हैं। अगर यदि गुरु के बताए हुए निर्देशन पर चलता है, भले हो सकता है उसमें सार बहुत सारे अवगुण भी हो सकता है भौतिक योग्यता ना भी हो, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि गुरु के निर्देश में नहीं चलेगा, हो सकता है वो विद्वान भी हो सकता हो, बहुत बड़ा शास्त्र का ज्ञान भी हो, संस्कृत में पारंगत भी हो, हाँ बहुत कुछ करता हो, लेकिन वो कृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे सीधे। हम जीवों में इतना हम सीधे सीधे नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए आपको राजा के पास मिलना हो जाकर के, आप स्वयं जाकर के मिल सकते हैं क्या? नहीं। जो राजा के जो निकट में जो लोग रहते हैं, मंत्री हो या कोई हो, है ना, उनको आपको साथ ही बनाना पड़ता है। ये गुरुजन जो हमारे गुरुजन है वही है, वो आपको लेकर के जा सकते भगवान के निकट। हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम सीधे भगवान के साथ सीधे चले जाएं। तो यहां पे आज हमने सुना, खैर हम पर तो कोई योग्यता है नहीं कुछ बोलने की, फिर भी प्रभु जी ने मौका दिया है भगवान की कथा गुणगान करने के लिए, तो हम आप भक्तों की कृपा से ही कुछ बोल पाए हैं। तो हम इतना बोलना चाहेंगे कि इस कथा में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रेरणा क्या है? एक तो यह है कि अहंकार नहीं करनी चाहिए। राजा के योनि के बाद में क्या मिला? तुरंत पशु योनि में चले गए। कौन? भरत महाराज। तुरंत पशु योनि, दूसरा योनि पशु मिल गया उनको। उसके बाद भगवत कृपा से फिर तीसरी योनि क्या मिली? ब्राह्मण परिवार में जाकर उनका जन्म हुआ। तब वो पिछले योनि में जो गलतियां करते थे उसको उन्होंने दोहराया नहीं, सावधान हो गए। उनको पशु योनि में जो तकलीफ मिला, सावधान हो गए, एकदम सचेत हो गए। अब उनको ऐसे इतने सावधान हो गए कि थोड़ी सी भी गलती नहीं किए, कोई चीज में उन्होंने प्रतिकार किया ही नहीं, भले वो शरीर क्यों ना चले जाए, काटने के लिए भी तैयार हो गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने, प्रभु की इच्छा यही है तो कोई बात नहीं, ऐसे हो गए। इसीलिए यह कथा हम भक्त लोगों को बहुत प्रेरणा देता है कि हम भगवान की भक्ति में कैसे निष्ठा रखें, कैसे भगवान की भक्ति करें अहंकार रहित होकर के, और भक्तों के संग में रह करके। हाँ, भक्त के संग ही हमें बचा सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कलेवरम य प्रयाति समद्भावम यात्रिनत यत्र संशय। अंतकाल में यदि कोई शरीर छोड़ने से पहले मुझे याद करके कोई शरीर छोड़ता है तो मेरी प्राप्ति करता है, लेकिन सरल नहीं है। उसके लिए हमें प्रत्येक समय, हमारे पास जो भी समय 24 घंटा भगवान की सेवा में जब रत रहता है, भगवान की कथा सुनते हैं, भक्तों की संग करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए ही संभव है, माला करते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।